हरे कृष्णा।
सबसे पहले हाँ मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ
राधिका रामन जी के लिए और कृष्ण बलराम जी लाए और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए हमको किस खिलाया इधर। हमारा प्लान नहीं था, लेकिन जब भगवान का इच्छा होता है तो असली आशीर्वाद देते भक्तों का संग, इसलिए आपका संग हमको मिल गया और भक्तों का कृपा से हम लोग 2-3 शब्द बोल सकते हैं भगवान के बारे में। हरे कृष्ण, कृपया प्रार्थना कीजिए जो हम लोग 2-3 शब्द बोल सकें सेवा रूप में। हम लोग आज पढ़ते हैं स्कंदनो अध्याय 11 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच भगवनात्मनात्मनम रामोत्तमकल्पकैः सर्वदेवामयं देवा जार्यवन्मखैः भगवानात्मनात्मानम् रामावुत्तमकल्पकैः सर्वदेवामयं देवा मीजेत्थाचार्यवन्मखैः। श्रीशुक उवाच, श्रीशुक देव गोस्वामी ने कहा भगवान आत्मना अपने आप आत्मनम स्वयं को रामः रामचंद्र उत्तम कल्पकैः अत्यंत श्रेष्ठ मत समाज से अत्यंत श्रेष्ठ साज समाज समान से सर्वदेवामयम सारे देवतों के आत्मा स्वरूप देवम भगवान ने स्वयं की ईजे पूजा की आथा इस प्रकार आचार्यवन आचार्यों के मार्गदर्शन में मखय यज्ञों को संपन्न करके अनुवाद और तत्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने एक आचार्य स्वीकार करके श्रेष्ठ सज समान सहित बड़ी धूम धाम से यज्ञ संपन्न किए। इस तरह उन्होंने स्वयं ही अपनी पूजा की, क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। तत्पर्य सर्वार्हाणम अच्युतेज्या, यदि अच्युत पूजे जाते हैं तो हर एक की पूजा हो जाती है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में 4:31-15 में कहा गया है यथा तरुर्मूल अनिसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्दभुजोपशकः प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणं यथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सिंचने से तना डाले तथा पत्तियों को जीवन दान मिलता है, और जिस तरह उदर को भोजन देने से शरीर की इंद्रियों तथा अंग प्रत्यंग जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा से भगवान के अंश रूप देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ संपन्न करने का अर्थ है भगवान की पूजा करना। यहाँ पर भगवान ने भगवान की पूजा की, अतएव कहाँ गया है भगवान आत्मा नत्मनाम इजे, भगवान ने अपने द्वारा अपनी पूजा की। किंतु इससे इस मायावाद दर्शन की पुष्टि नहीं होती जिससे जिसके अनुसार मनुष्य अपने को भगवान मानता है। जीव भगवान से सदैव भिन्न होता है, विभिन्न कभी भी भगवान विभिन्न अंश कभी भी भगवान नहीं होते। यद्यपि कभी कभी मायावादी भगवान द्वारा की गए हैं अपनी पूजा का अनुकरण करते हैं। भगवान कृष्ण हर प्रतः गृहस्थ के रूप में अपने आप का ध्यान करते थे, और इसी तरह भगवान रामचंद्र के स्वयं को तुष्ट करने के लिए यज्ञ संपन्न किए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि सामान्य व्यक्ति अहंकार उपासना विधि के अनुसार भगवान अहंग्रह उपासना विधि के अनुसार भगवान का अनुकरण करे। यहाँ पर ऐसी अवैध पूजा की संतुष्टि नहीं की गई, संस्तुति नहीं की गई। हम लोग रामचंद्र जी के बारे में कथा सुन रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, लेकिन कथा का उद्देश्य क्या है? वास्तव में आगे इसी अध्याय में बीस श्लोक और तीस श्लोक भगवान बताएंगे। हाँ, शुक्रदेव गोस्वामी बता रहे हैं जो भगवान का रामचंद्र जी का कथा सुनने से क्या फल क्या लाभ मिलता है हमको, ठीक है, श्रुति फल हमको क्या मिलेगा उसे सुनने से। तो बता रहे हैं ये कथा सुनने से हमारा अंदर से जो अमल ईर्ष्या खत्म हो जाएगा, और मत्सरता मतलब ईर्ष्या सूया, ये हमारा कारण है इस संसार में रहने का। श्रीवतम स्वागत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदंतस्तु अभद्राणी विधुनुति सुहृत सतम। अभद्राणी मीन्स अपवित्रता, हमारा जो हृदय में खास करके ईर्ष्या खत्म हो जाता है। और वास्तव में भगवान रामचंद्र जी का जय श्री श्रीधर का राम कृष्ण बलराम जगह बधुशुकर महारानी की जय, विशेष लीला का अर्थ क्या है, रामचंद्र जी का जो है महत्व क्या है वो भी बता रहे हैं। जो श्री राम रावण को मार डाला, जो पुल बनाया, वो अद्भुत लीला किया था, वो उनका विशेषता नहीं है, उनका विशेषता ये है जो उनका नाम केवल स्मरण करने से मनुष्य को जो है सर्वसिद्धि प्राप्त होता है, सर्व पाप नाश हो जाता है। और ये सार है भागवतम का अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवतम महापुराण का। व्यासदेव महाराज ने विराम करने के लिए ये श्लोक बताया, यस्या संकीर्तना नामनम सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख सामानस तम प्रणामी हरिम परम। उनका नाम करने से, भगवान का नाम, राम जी का नाम, कृष्ण हरि का नाम लेने से सर्व पाप और दुख खत्म हो जाता है। रामचंद्र कथा में ये सारे बहुत अद्भुत कथा है, और श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य भी है निगम कल्प तरुर गलितम फलम। श्रीमद् भागवतम ये पुस्तक है सारे वेदों का फल है, गलितम फलम, गलितम मतलब पक्का फल है, पक्का फल रसमलायाम एकदम रास है उसमें। सारे विद्वों का सार है रास प्राप्त करने का। जैसा कोई किसान जमीन में बीज डाल देते हैं और बाद में इतना मदद करके पानी देते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं, कोई सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करते हैं, कोई बकरी ना आवे, कोई गाय ना खावे, उसको बहुत पसीना तक जो है प्रतीक्षा करना और प्रयास करना पड़ता है सुरक्षा। लेकिन पेड़ का उद्देश्य क्या है, फल देगा तब तो। और जब फल आ जाते हैं आह बहुत किसान बहुत खुशी हो जाता है, आह फल आ गया, पतला पतला कच्चा कच्चा फिर भी बहुत खुशी हो जाते हैं। और जब फल पकने जा रहा है ना, जब पक जाता है, जब पक गया और गिर गया, आह कितना आनंद आ जाते हैं। वो खाने से तो छोड़ दीजिए, दिखने से उनको आनंद आते हैं। पिछले जो है जमाने में जब अंग्रेजी लोग था इधर, सबसे पहला जो आम होता था, आम, वो जो आम होता था उसको पहले रानी के लिए लंदन में बेचता था। पहला आम कोई भी चू नहीं सकते हैं, पहला आम जो है रानी खाते हैं, वही भगवान उनका था। हम जैसे हमारा पास जो है, हम लोग कोई भी चू नहीं सकते हैं जब तक भगवान नहीं खाएंगे। तब तक उस समय पुराने जमाने में जब पहला आम आता था उसको रानी बेचता था इंग्लैंड में, अंग्रेजी लोग खाता था। लेकिन भक्ति ठीक उल्टा है, आध्यात्मिक रास भक्तिसंत सरस्वती ठाकुर आम को देख करके उनको खाऊंगा और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उनको दंड दे, तुम क्या किया, ये भगवान के लिए, तुम ये आम का रास नहीं विचार भी नहीं कर सकते हैं भगवान के लिए, भोग लगा बिना पाप लगेगा। हम लोग जानते हैं भक्तिसंत सरस्वती तब से, उनका उम्र 3 साल था तब से, जब उनको ये पाप हो गया उनके साथ, अपराध हो गया उनसे, वो संकल्प ले लिया मैं जीवन में कभी आम स्पर्श नहीं करूँगा, नहीं खाऊंगा, और किया भी दृढ़ प्रतिज्ञा। तो मतलब ये रास, जिस रास के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए, वेद पुराणों में ये श्रीमद् भागवतम रास है, गलितम फलम। और ये रास होता है, हम लोग भक्त रसामृत सिंधु के अनुसार हमारा 12 रास होता है, ठीक है। एक तो मुख्य, गौण और मुख्य, जानते हैं कौन सा वाला, हम लोग जानते हैं संक्षिप्त में सिद्धांत समझना चाहिए, तब हम लोग लीला में जाएंगे। जब रास होता है ये तो 10 से रास होता है, सबसे पहला सीधा श्रृंगार रास, मधुर रास, उसके बाद हाँ वत्सल्य, सख्या, उसके बाद दस्य, बाद में शांत रास, ये तो मुख्य राज है। उसके बाद जो है गौण राज है, गौण राज होता है कौन सा, हाँ वीर्य राज, एकदम बिल्कुल वीर जैसा लड़ने के लिए भीष्म पितामह के पास था। लेकिन वो कहते हैं जब तक हमारा पास स्थाई भाव नहीं होगा इसी 5 मुख्य राज में, मुख्य राज में, तब तक गौण रास प्रकाश नहीं होगा। गौण रास हमको सहयोग देने के लिए, मतलब उसको सहयोग देते हैं मुख्य रास प्रकाश करने के लिए, रास लेने के लिए, ठीक है। बाद में जो है वीर्य रास है, हास्य रास है, ठीक है, नहीं हास्य उदाहरण भी दिया गया है, बहुत सारे भक्त लोग जो हास्य रास भगवान के साथ वो ये रास स्वाद करते हैं। बाद में जो है एक रास होता है ना विभत्स रास, खतरा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हॉरर है ना, हॉरर रास होते हैं। बाद में रुद्र रास और अद्भुत रास, अद्भुत रास जब आश्चर्य रास, अद्भुत रास, हम लोग नृसिंह भगवान के लिए अद्भुत श्रृंगम रोज गाते हैं हम लोग, अद्भुत रास होता है। और दया, अलग अलग रास होता है। और इस भौतिक संसार में इसी रास को व्यक्ति लोग अंग्रेजी रानी के रूप में जो है वो आम लिखाना चाहते हैं, और कोई भी कुछ भी काम किया जाता है नकली रूप में रास प्राप्त करना चाहते हैं। वो लोग नहीं जानते हैं जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण हरि, भगवान हरि ही रसो वही सहा रसराज, श्री कृष्ण रसराज जो राजा है, रास को वितरण करने वाला, वो तो भगवान श्री कृष्ण ही है, राम है। तो लोग जो है नकली रूप में हर मूवी देखते हैं, कोई भी ड्रामा देखते हैं, रसशास्त्र होता है, रसशास्त्र के अनुसार बताया गया है उसमें युवा क्या उसको नायक नायिका, उसमें जब ड्रामा होता है उस समय तो मूवी नहीं था, ड्रामा था, तो उसमें जो है एक जो नाटक करने वाला जो नायक नायिका हीरो हीरोइन, उद्देश्य क्या है, जब वो लोग ड्रामा देखते हैं तो वो जो देखने वाला है वो नायक और नायक हीरो 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 के साथ जो है लीन हो जाता है, और जो हीरो जो नायक वो उनको महसूस होता है, जो ड्रामा देखने वाला आदमी उनको भी अपने आप महसूस हो जाता है, उनको जो हीरो के लिए जो है रास मिलता है, वो जो सारा लफड़ा हो रहा है उनके साथ, सुख दुख बीच में थोड़ा गाना मरपीट, उसी प्रकार जो है जो मूवी देखते हैं उनको वो ही रास होता है ना। और एक विभत्स रास समझ लीजिए, एक भी एक हॉरर मूवी होता है ना, ड्राकुला और कोई खतरनाक मूवी होता है, आप कभी सिनेमा देख लीजिए, कभी कभी लोग हमारे पास एक दोस्त है एक इलाहाबाद में, तो उनके पास सिनेमा हॉल अभी भागता बन गया, बहुत अच्छा भागता है, तो जब मैं देखता हूँ सो लोग जाते हैं, बहुत बड़ा स्क्रीन लगाते हैं, अंधेरा है, कुछ नहीं है, सफ़ेद पर्दा, सब लोग बैठे हैं, कोई मतलब भाव उनके पास अनुभव नहीं है, उसी नकली अनुभव को जो है सबसे पहले लाइट बंद होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, ओम अज्ञान तिमिर अंधास्य भौतिक रास को जो है प्राप्त करने के लिए पहले तिमिर अंधास्य होना चाहिए, अंधाय अंधंधुर परिमानस, संपूर्ण अंधेरा होना चाहिए, और बाद में माया अपना मूवी शुरू कर देते हैं, और जो मूवी होता है वो सारे लोग कभी कभी इतना आवाज आता है। एक बार मेरे को याद है मैं जब गया था एक बार, तो उसमें एक पद्मावती मूवी था, तो इतना पूरा सिनेमा हो हिल रहे थे, वो क्या है उसमें सब लोग ताली देता था, बाद में मुर्दाबाद कुछ ऐसा कुछ आवाज आता था, एक आदमी का नहीं बहुत लोग जो है चिल रहे थे और आनंद प्रकट करता था, और जब मूवी से निकलने लगा कोई भी मूवी उनका मुख देखिए, लोगों का मुख देख लीजिए और पता चलेगा कौन सा रास उनका अनुभव हुआ। कोई मूवी कोई हंसने का मूवी था, अगर सब लोग निकलते हैं मूवी से मस्ती है, मस्त मस्ती है, अगर कोई हॉरर मूवी था हॉरर मूवी लोग आता है मुख बिल्कुल सूख गया, और उस समय जो है आप दरवाजे के पीछे खड़े हो जाइए, और जो लोग निकलते हैं हॉरर मूवी के बाद विवाद पागल हो जाए, किया हम लोग ऐसा नीचे ऐसा उसको पिक लोग पागल हो जाते हैं। रास प्राप्त करने के लिए लोग सिनेमा देखते हैं, प्रयास करते हैं, क्लब जाते हैं, सोचते हैं एक दिन का बेहाबे बोलो से दिन हमारे दिन ऐसा दिन नहीं होने वाला, तब दिन होगा जब लोग कृष्ण लीला में डूब सकते हैं, डूब जाएंगे, जब ब्रह्मचंद्र सर्वरहानम अच्युतेज्य, इसलिए इसी श्लोक के सीधा किया जाता है जो रामचंद्र हमको यत यत अचरति श्रेष्ठस तत्त एवितरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लुकस्तनुवर्तते, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को याद ध्यान करता था और पूजा करता था, और श्री राम अपने आप को पूजा किया था। देखिए रामचंद्र राम रामलीला हर लोग आजकल प्रसिद्ध है, लोगों का हृदय में रामलीला है जरूर, और कोने कोने में रामलीला लोग बोलते हैं, लेकिन वो लीला तब बताया जाएगा जैसा आदमी का हृदय वैसे बताएगा, कर्मी लोग ज्ञानी लोग ध्यानी लोग और धानी लोग और नागा बाबा लोग सारे बहुत कुंभ मेला में जाइए हर व्यक्ति रामायण करते हैं, लेकिन रास निकलेगा जितना हमारे पास हृदय है इतना रास निकलेगा, यम यम वपि स्मरम भवम तत्त प्राप्ति कलेवरम, भगवान के जैसे भाव वैसे प्रभाव होगा, लेकिन असली रास जो परम रास केवल भक्त से हम लोग ले सकते हैं, केवल भक्तों से, क्योंकि उसमें दिखाए जाते हैं, क्योंकि भक्तों का हृदय निर्मत शरणम सतम, भक्तों का हृदय एकदम पवित्र है, अगर भक्तों का हृदय से ऐसा कथा आ जाए तो हमको प्रभाव करेगा, बहुत जरूरी है।
और जो व्यक्ति रामचंद्र जी ने बोला वो एक आचार्य को स्वीकार किया था, उन्होंने आचार्य को स्वीकार किया था, उनका अदृश्य यज्ञ किया था, उससे सीधा हो जाता है। देखिए अगर जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा तब तक हम लोग प्रचार नहीं कर सकते, कोई भी यज्ञ नहीं कर सकते हैं। उस समय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कोई भी यज्ञ करता था, इस कलयुग में यज्ञ संकीर्तन प्रज्ञा जयंती ही सुमेध ऐसा, उसमें बहुत सारे तुलना किया जा सकते हैं, समय कम है। श्रील प्रभुपाद जी भी अपना गुरु महाराज से आदेश स्वीकार किया था तब प्रचार करने लगा। जब नित्य गुरु आदि गुरु नित्यानंद प्रभु जब तक चैतन्य महाप्रभु से आदेश नहीं स्वीकार किया तब तक प्रचार नहीं किया, तब तक यात्रा करता था, पवित्र यात्रा। जब मायापुर में बाद पूरी में उनको बोला तुम जाओ गौड़ देश में जो है प्रचार करो, तब नित्यानंद जो है अभिराम ठाकुर रामदास और गदाधर दास उनके साथ निकल गया 12 गोपा के साथ। आज अभिराम ठाकुर जी का जो है तिरुभाव महोत्सव है, अंत में हम लोग कुछ 2-3 शब्द बताएंगे कैसे ये रास आते हैं परंपरा द्वारा। तो रामचंद्र जी ने ये आज्ञा स्वीकार किया था और यज्ञ किया था, उसी यज्ञ में बहुत मदद करना पड़ता है, मतलब प्रयास करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है बैठने से, प्रयास करना पड़ता है। और एक श्रीमद् भागवतम हम लोग जब सुनते हैं, मैं आपको 2-3 कहानी बताना चाहता हूँ रामायण का। उसमें जो है जब यज्ञ करने लगा, कोई भी यज्ञ आसानी से प्राप्त नहीं होता है फल, यज्ञ बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो उसमें जो है अश्वमेध यज्ञ जब रामचंद्र ने किया, और हम लोग महाभारत में देखते हैं, महाभारत जब महाभारत में भी पूजा किया युधिष्ठिर महाराज एक ही उद्देश्य के लिए यम किया, जो अर्घ्य पूजा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, बस इतना तक। भगवान श्री कृष्ण को जो है परम पुरुष रूप में स्थापना करना है पूरा पृथ्वी में, इसी उद्देश्य के लिए यज्ञ किया था, कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को स्थापना करने के लिए परम पूजनीय इष्ट रूप में। उसी प्रकार रामचंद्र यज्ञ किया था धर्म स्थापना करने के लिए, अपने आप को पूजा किया। एक घोरा, विशेष घोरा होता है, एक घोरा उनके पास एक मतलब विशेष कान होना चाहिए, पूंछ होना चाहिए, पूरा जो है रंग होना चाहिए घोरा का, उसको बेच दिया जाता है और उसके पीछे पीछे आर्मी जाते हैं पूरा पृथ्वी में घूमने के लिए। और हर राजा इसी घोरा को स्वीकार करना चाहिए और समर्पित होना चाहिए। तो एक राम जी का भाई शत्रुघ्न आर्मी के साथ निकला, जब जा रहे थे सब लोग राजा धन्यवाद करके सब समर्पित हो जाते थे, सब समर्पित हो जाता था, लेकिन एक छोटा सा राजा, गांव का राजा समझ लीजिए, बिल्कुल तुच्छ राजा, सांसारिक दृष्टि से जो है तुच्छ राजा, बिल्कुल विरोध हो गया और लड़ाई करने लगा। उनका नाम था वीरामाली राजा, और तो शत्रुघ्न भी आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा तुच्छ राजा हमारे साथ युद्ध करने लगा क्यों? कारण था वो पक्का शिव जी का भक्त था, पक्का शिव जी का भक्त था, और शिव जी के लिए इतना प्रशंसा कर दिया, मतलब इतना प्रसन्न कर दिया जो शिव जी उनको पूरा सुरक्षा किया था। और वास्तव में ये छोटा सा राजा सबको पराजित कर दिया, पूरा आर्मी पराजित कर दिया। तब शत्रुघ्न भी आश्चर्यचकित हो गया, अब क्या करना। तो पीछे आर्मी के पीछे बाई चांस वो हनुमान जी को लेके गया, हनुमान जी पीछे थे, रात में बैठे थे ऐसा, अरे गुप्पति आराम करता था, उनके क्या रावण के युद्ध के बाद उनको युद्ध करना इच्छा नहीं था, कोई युद्ध आराम करता था, और रघुपति राघव राजा राम। तो शत्रुघ्न आ गया, बोला अरे हनुमान चलो युद्ध करना है। कहा युद्ध भाई रघुपति, तो राम राम ठीक है लेकिन तो युद्ध करना पड़ेगा, आर्मी खत्म हो गया जल्दी करिए। तो हनुमान जी को आना पड़ा, जब हनुमान जी जो है आ गया वो पीछे पीछे कर दिया और अपना पूंछ घुमाने लगा, और उसी राजा को जो है एक पतक में जो है खत्म कर दिया उसका आर्मी सब कुछ। तब वो राजा जो है ना वीरामाली वो बिल्कुल गुस्सा हो गया, शिव जी, शिव जी का मंत्र लेना ले लिया, बोला शिव जी प्रकट हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आप मेरे को वचन दिया मेरा कभी पराजित नहीं होगा, ये क्या हो रहा है। एक बंदर मेरे को परेशान कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं ये हनुमान जी, ये शक्ति विष अवतार शिव जी का एक अंश है, उनका वीर का अंश है। ये कैसे हो रहा है, बंदर मेरे को पराजित कर दिया, तुम युद्ध करो। तो शिव जी को जो है युद्ध करना पड़ा हनुमान जी के साथ। ऐसा होता है शास्त्र में, श्री राम और परशुराम दोनों भगवान का अवतार आपस में युद्ध करने लगा। कौन भगवान का लीला समझ सकते हैं प्रभु। तो शिव जी और हनुमान जी के युद्ध करने लगा, और हनुमान जी अपना पूंछ, अपना रूप स्वीकार करके बराने से और पूंछ घुमाने लगा। शिव जी भी, शिव जी को पुम मार दिया, शिव जी उड़ गया, शिव जी भी हार गया। तब भगवान शिव जो है आश्चर्य हो गए, ये कैसे बंदर मेरे को भी उड़ा दिया, ये आश्चर्य की बात है। तब उन्होंने देखा हनुमान जी जो है मुख में राम 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 राम। तब शिव जी समझ गया रमो 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 इति, ये तो राम जी का नाम ले रहे हैं, इसलिए उनके साथ दुश्मनी बनाने जरूरत नहीं है। उनको आ गया, सुनो सुनो भाई, चलो ठीक है, आप एक कम करिए, आप जो है आराम कीजिए, हम दोस्ती करते हैं आपके साथ। समझ गया, जो भगवान का नाम लेते हैं उनका पराजित कभी हो ही नहीं सकते। वास्तव में हनुमान जी केवल अंश था, साधारण बंदर से समझ लीजिए सांसारिक दृष्टि से। लेकिन जब भगवान का, प्रभुपाद जी बताते हैं, जब साधारण लोहा आग में डाल दिया जाता है, वो लोहा नहीं है, वो आग बन जाते हैं, समझते हैं ना, वो आग का काम करते हैं। उसी प्रकार जैसे रूप गोस्वामी एक प्रार्थना करते हैं, जब साधारण पानी, कुआं का पानी, असाधारण कुआं का पानी से जो है शालिग्राम जी को पूजा किया जाता है, उसी पानी को पिया जाता है, पूजा किया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। साधारण गांव का कुआं, अगर उसी साधारण पानी से शालिग्राम जी को पूजा किया जाता है, वो साधारण पानी नहीं होता है, वो पूजनीय चरणामृत बन जाते हैं। अकाल मृत्युहार नाम सर्वविधि विनाशन। उसी प्रकार जब साधारण अहो बतासुपजुतो यगरीयम यम जीव ग्रीवर्तत नाम तुभ्यम, जब कुत्ता को खाने वाला आदमी क्यों न हो, अगर भगवान का नाम लेते हैं तो उनको पूजा किया जाता है, उसको आर्य समझते हैं लोग, वो ही काम। लेकिन इसी चीज को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम उपयंत। लेकिन ये बुद्धि कौन देने वाला, ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान हृदय में रहते हैं, और जब भगवान संतुष्ट होता है तब हमको ये बुद्धि ज्ञान देते हैं। किसके लिए देते हैं, तिशन सतत युक्तानम भजतम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम का सेवा करते हैं, प्रीति किसके लिए सेवा करते हैं, भगवान के लिए नहीं, भगवान के लिए, भगवान तो बहुत दूर है, कैसे के भगवान को पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान शिव बताते हैं अरदधानम सर्विषम विष्णुर अरधनम परम तस्मत परतरम देवी तदीयनम समर्चन। जरूर जितना आराधना होता है, विष्णु आराधना सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उससे श्रेष्ठ विष्णु का भक्तों के लिए सेवा सबसे श्रेष्ठ। और प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत बड़ा वीआईपी आदमी के लिए संतुष्टि देना बहुत मुश्किल है, कोई प्रधानमंत्री, अमेरिका का प्रधानमंत्री, उनको हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट दिया जाए उनको जरूरत नहीं, उनके पास 1000 हेलीकॉप्टर है, लेकिन उनके बच्चों के लिए एक छोटा सा चॉकलेट दिया जाए, ले लो पापा ये अंकल अच्छा है, बस हो गया, आप मेरा बच्चों का प्रिय आदमी, मेरा भी प्रिय आदमी हो जाता है कि नहीं। मेरे पास भी अनुभव है, कहीं बड़ा बड़ा वीआईपी लोगों का घर में मैं प्रवेश किया था उनके बच्चों के द्वारा यूज प्रीचिंग करके। और क्या, और जब किसी मंत्री के पुत्र बुला रहे हैं डिनर के लिए घर में, तो पिताजी को स्वीकार करना है, पर ये कौन है, मेरा दोस्त, चलो ठीक है ये। लेकिन उसी मंत्री को जो है पकड़ने के लिए पूरा कहीं पार्लियामेंट में और विद्या मंत्रालय में संभव इतना लाइन खड़े हो गया, 33 करोड़ देवता खड़े हो गया उनको पूजा करने के लिए, सच बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब उनका परिवार का सदस्य के साथ जो है मित्र बन जाते हैं, वो लोग आपको बुलाते हैं, तो वो पीछे दरवाजे से हम लोग प्रवेश करते हैं, तब उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा है कि नहीं। और उसी बड़ा बड़ा मंत्री लोगों के साथ और डीएम के साथ और कोई भी है, हम लोग अनुभव था, उन्हीं का ऑफिस में लोग झुकाते हैं ऐसा, और उनको देते हैं कितना 30 सेकंड 1 मिनट, दूसरा आया साइन जाओ जाओ जाओ, ऐसे लोगों के पास, मेरे पास भी अनुभव था, एक एक घंटा उनका ऑफिस में कीर्तन करता था ऐसा, बाजा बाजा लेकर, एक साथ नाचते थे। कैसे वो सब संभव होता है? क्योंकि भगवान का नाम में बहुत शक्ति है। तब शिव जी ने कहा, हनुमान सुनो, आपके साथ दोस्ती करना है। वो समझ गया झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहा का भगवान है यथा योगेश्वर कृष्ण यथा अर्जुन धनुर्धरः विजयी भवे। जहाँ भक्त होता है, जहाँ भगवान, और भगवान और भगवान का नाम तो फर्क है ही नहीं। नमो चिंतामणि रूपम चैतन्य रास विग्रह शुद्ध नित्य पूर्ण मुक्त अभिन्न त्वम नामनामि। लेकिन इसके लिए कौन विश्वास करते हैं? श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी, जैसे बर्तन वैसा मिलेगा हमको रास। इसलिए भगवान कहते हैं यथ हम प्रपद्यंते तम स्थाए व बजान हम। बर्तन के अनुसार मिलेगा, श्रद्धा पत्र बोलते हैं ना हम लोग, कहते जो है अगर सरिता जल नदी जल कर्म कमंडल कह कहे तुलसी कह गए सही। सरिता जल नदी कूप अधिकम बूंद के समय। कर्म कमंडलों के अनुसार, अपना हृदय के अनुसार, अगर आप हमारा पास श्रद्धा इतना है तो इतना भक्ति मिलेगा हमको। बर्तन के अनुसार मिलता है, चाहे समुद्र नदी और कुआं क्यों ना हो। अगर हमारा छोटा सा धक्कन है, समुद्र भी सामने हो जाए, हम धक्कन ही मिलेगा। इसी प्रकार बहुत सारे लोग आते हैं, अपना अपना श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं। कोई देवी देवता कमाइस्ते स्तर हित ज्ञानम, और मंदिर में भी लोग आते हैं, प्रभु ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन असली भक्ति होता है भक्तों के साथ जो संपूर्ण समर्पित हो गया। मानस देह गेह जो किचु मोरे अर्पिलु तो आपदे नंद किशोर, संपूर्ण रूप में उनके लिए भगवान सेवक बन जाते हैं। तब शिव जी ने बोला, हनुमान जी तुम शायद भूल गया, अच्छा वो अब क्या आशीर्वाद दूँ? तो हनुमान जी ने बोला, आप इधर खड़े हो जाइए, आप इसी जो सैनिक मरा हुआ है हमारा शत्रुघ्न का आर्मी, उसको देखते रहिए, मैं भी थोड़ा सा पहाड़ काठमांडू जाऊँगा, पहाड़ नेपाल जाऊँगा, उसमें हिमालय उसमें संजीवनी लेके आऊँगा उसको जीवित बनाने के लिए। तब भगवान शिव जी ने कहा, हनुमान आप शायद भूल गए ना, आप भगवान का नाम में इतना शक्ति है, आपको केवल एक बार बोलने से वो जीवित हो जाएगा। आप महान भक्त क्या भूल गया? हाँ हनुमान जी को थोड़ा शर्म हुआ, हाँ सही बोला, ठीक है, राम 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 सबको जीवित बना दिया। लेकिन ये शुद्ध नाम होना चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्ध, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। और हनुमान जी के पास ऐसा है, ऐसा भाव है। एक बार राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर में गया था, दक्षिण भारत में है नदी और सरोवर है पंपा, जब सीता जी को खोज में जाता था। बाद में उसमें मतंग ऋषि आश्रम में आ गया, शबरी शबरी का जो है भक्ति स्वीकार किया था, वो अपना फल खा करके उनका चूके छू गया, ऐसे लक्ष्मण तो बहुत गुस्सा हो गया। राम बोला छोड़ो ठीक है, इतना प्रेम है तो उनको भविष्यवाणी बता दिया, और तो बोला आग में प्रवेश किया था, इतना भक्ति का प्रतीक्षा किया था, पूरा गुरु का अपना आचार्य के आदेश के प्रति पूरा विश्वास था। प्रतीक्षा करो, केवल प्रतीक्षा करो, राम जरूर आएगा। ऐसा दिव्य तथा गुरु तस्ति कथिन प्रकाशंत महात्मा, जो गुरु के आदेश के प्रति पूरा विश्वास करते हैं उनके लिए जरूर भगवान प्रकाश हो जाएगा, सब प्रकाश हो जाएगा। उनके पास विश्वास था, श्रद्धानुसारी भक्ति अधिकारी, तो आग में प्रवेश किया था, दर्शन मिल गया उनका। और बाद में जो है जब राम और लक्ष्मण पंप सरोवर में आ गया, उस समय सुग्रीव उनको देख लिया और सोचा वो बाली का कोई जासूस है, बाली का जासूस है मेरे को मरने के लिए। तब हनुमान जी से बोला, हनुमान तू थोड़ा जाइए चुपके चुपके और पता कर लीजिए कोई दुश्मन है या कोई मित्र है हमारा, लेकिन थोड़ा सा राजनीति करके थोड़ा छुपा के थोड़ा सा नतक कीजिए, प्रकट मत कीजिए जो आप सुग्रीव का आदमी हैं। और कैसे आप सुग्रीव को प्रशंसा कीजिए, अगर वो गुस्सा हो जाएगा तो बाली का आदमी है, अगर खुशी हो जाएगा तो हमारा आदमी है। तो हनुमान जी बिल्कुल साधु वेश लेकर के बैठ गया, आ गया, आप लोग कहाँ से आ गया, आप सुग्रीव के बारे में कुछ जानते हैं, सुग्रीव को मानते हैं? वो हनुमान जी को राजनीति करना नहीं आते हैं, वो सीधा बात करते हैं, वो छुपा के कुछ नहीं करते। सुग्रीव को जानते हैं? आपका विचार सुग्रीव के बारे में क्या है? सीधा सादा ब्रह्मचारी राजनीति नहीं आते है, सीधा तेरा बात करना, सुग्रीव के बारे में क्या सोच रहे तुम? बोला ये सुग्रीव है कौन? और हनुमान जी बात सीधा स्पर्श किया था,
तब राम, अब देखिए राम, राम क्या बोलने लगा लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण देखो ये आदमी इतने सीधा साधा है, उनके विचार, उनका हृदय और उनका अनुभव एक ही है, वचना एक है, मनसा एक है, सब एक ही है। इसलिए वो व्यक्ति जिसका ये सेवक है वो जरूर सर्वविजय होगा। जिसके पास ऐसा सेवक है वो व्यक्ति जरूर विजयी होगा सदैव। ऐसे सेवक रखना बहुत ऊंचा बात है। तब राम जो है, हनुमान बहुत खुशी हो गया, हाँ ये हमारा आदमी, चलो सुग्रीव के पास। वो लक्ष्मण जी को और राम जी को बैठा दिया हाथ में भुजाओं में और उड़ने जाने लगा। तब हनुमान जी को बहुत शक्ति आ गया राम जी के साथ संपर्क में, उसको पहले नहीं पहचाना। राम जी उनको तुरंत स्वीकार किया था लेकिन हनुमान जी तुरंत नहीं पहचान पाया राम जी को, जब तक राम उनका हार नहीं देखा। जानते ये कहानी ना, लेकिन ये कहानी अभी समय नहीं है। उनको एक हार था उनके पास लेकिन हनुमान जी को दिखाई नहीं दे रहा था। उनको वचन दिया गया है जो आपका मालिक होगा, गुरु आपका, आपका जो मालिक होगा वो ही केवल देख सकते हैं, किसी को दिखाई नहीं देगा। और रामचंद्र देख लिया। और बाप जब रामचंद्र जी को बैठा दिया तो हनुमान जी को इतना शक्ति आ गया, वो समझ गया बस मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ। उसी प्रकार जब भक्त लोग, असली भक्त लोग जो है ईमानदार भाव से भगवान के नाम के साथ संपर्क में आ जाते हैं तो उनके पास इतना शक्ति, कृष्ण शक्ति बिना नहीं परिवर्तन, तुरंत शक्ति आ जाता है और उनका पूरा विश्वास हो जाता है, हाँ मैं अभी करने के लिए कुछ भी करना चाहता हूँ, सकता हूँ, शक्ति आ जाता है। वो प्रभुशील प्रभुपाद जी था, अमेरिका में टोम्पिन स्क्वायर पार्क में पेड़ के नीचे बैठ गया और पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला प्रभु, उनके कितना विश्वास था। उन्होंने लिखा जलदूत में, मैं नहीं जानता हूँ आप मेरे को क्यों लाया इधर, लेकिन मेरे पास न तो भक्ति न तो ज्ञान है मेरे पास, आपका गरीब मैं, मेरे को कंपुटली बना दीजिए, न चाहो मेरे को, लेकिन मेरे पास पक्का विश्वास है आपका नाम के प्रति, है कि नहीं। और सबसे बड़ा याज्ञ किया उन्होंने, सबसे बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग आजकल हजारों भगवद्गीता वितरण करते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज सबको उपहार देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला संकीर्तन भक्त कौन था इस कौन में, श्रील प्रभुपाद। उन्होंने 600 भागवतम ले लिया और सबको, पहला जो कैप्टन था जगाज का उनको पहले वितरण किया था। एक बार भवानंद प्रभु, भवानंद आ गया उनके पास और सर अपना सैलरी तनखा महीना का दे दिया प्रभुपाद जी को, सर जितना पैसा उनके पास था दे दिया उनको। और बाद में बोला आप मेरे को एक भागवतम से दे सकते हैं, प्रभुपाद जी बोला हाँ बिल्कुल दे दीजिए, उसके लिए अलग अलग पैसा देना पड़ेगा। कैसा आदमी, तो उनको बिक मरना पड़ा, बाहर गया वो पैसा कलेक्शन किया फिर खरीद लिया। प्रभुपाद जी फ्री में कुछ नहीं देता था वो दक्षिणा था, अभी उसको दाम देना पड़ेगा आपको। आजकल लोगों का मूड क्या है, हाँ इसको हर कृष्ण हरे रामा फ्री होना चाहिए, तो इसको भगवान को तो फ्री होना चाहिए, सब लोग फ्री होना चाहिए। देखिए भगवान सब फ्री लेना चाहते हैं, धन संपत्ति घर में आओ, फ्री फ्री कुछ नहीं होते इस संसार में, पैसा नहीं भक्ति। तो इसी प्रकार जो है बहुत सारे कहानियां ऐसा है जो हमको भगवान के नाम के संपर्क में होना चाहिए। और एक कहानी बताऊं, हाँ जब मैं हनुमान जैसे बिल्कुल वफादार अगर हम हो जाते हैं ना अपने आचार्य के प्रति, मालिक के प्रति, तब अगर हम लोग पवित्र भी साधारण बंदर जैसे क्यों ना हो, लेकिन शक्ति कहाँ से आते हैं, हमारा प्रयास से नहीं। नया आत्मा बलहीने न लभ्या न विधया न बहुनम श्रुते न, बहुत भक्ति शास्त्री भक्ति वैभाव सुपर पुपर कोर्स किया जाए नहीं, उससे तो ठीक है, ये गौण मामला, मुख्य क्या मामला है, गुरु का आदेश के प्रति समर्पित भाव, बिना महत पदरजो अभिषेक हम निष्किंचनावत। जब तक हम लोग जो है भक्तों का धूल सिर पे नहीं लगाएंगे, भक्तों का सेवा नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, विनम्र भाव। और गुरु तो भगवान का सेवक प्रिय एवत सक्षत हरित समास्त्र शास्त्र उक्तस्तास भव्यत सभ्य, किंतु प्रभोर यह प्रिय एवत, बहुत प्रिय है कृष्ण प्रिय सख, उसका आदेश स्वीकार करके
मैं गुरु महाराज का आदेश पालन करने के हेतु मैं ये संकल्प उठाया हूँ, प्रभुपाद जी ने बोला ना। और बाकी तो मैं स्वयं इच्छा से कभी नहीं जाऊँगा अमेरिका, केवल गुरु का आदेश पालन करने के लिए हेतु। तो हनुमान जी एक बार भी उसको युद्ध करने के बाद रामायण का हो समाप्त हो चुका है, रावण मर गया, कोई सेवा नहीं है अयोध्या में। तो अयोध्या में जो आप ये प्रसिद्ध कहानी है, तो हनुमान जी को कोई सेवा ही नहीं था, वो पीछे पीछे राम जी के साथ घूमता था। और बाद में जब रात को सीताराम अपना दरबार में प्रवेश किया था, अपना कोटा में, हनुमान जी भी उधर जा रहे, तो हे हनुमान अभी इधर आना, प्रवेश मत करना है, इधर केवल विशेष आदमी प्रवेश कर सकते हैं। कौन सा विशेष आदमी प्रवेश? देखिए ये अंदर का मामला है, देखिए इसमें अंदर जिसके पास एक लाल लाल वो लाल होता है ना, इसमें जो जिसके पास लाल कलर है उसी तो महारानी देख करके लाल लगा रहे थे। तो अच्छा जिसके पास ये लाल होता है वो आशीष मतलब पतिव्रता होता है ना, उसमें वफादार आदमी जिसके पास लाल होता है। अच्छा एक मिनट मैं आता हूँ। तो वो गया था और सब दुकान बंद था सब कुछ बंद था, तो कहाँ ना कहाँ से पूरा एकदम तोड़ दिया, ले लिया पूरा काला लाल लगा दिया, और बहुत लाल लाल भूज जैसा लाल। ये कौन है? मैं हनुमान हूँ, मैं बहुत वफादार हूँ, पूरा लाल लाल लगा दिया। इसलिए हनुमान जी को लाल लाल रूप में जो है पूजा किया जाता है ना, वफादार भाव। उनके पास कोई अपने के लिए कुछ नहीं रहा, पूरा पूरा शरीर मानस देह की हजो की चुमोर। ये वास्तव में गुण है, गुण। जब राम रामचरित मानस में भी उल्लेख है, जब राम रावण के साथ युद्ध करने निकला और सारे सबको मार दिया, राम युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता था अंत में, केवल जब अंत में जो है निकला तब रावण अपना पुष्पक रात में जो है और बस उसमें निकला, और इतना चमत्कार उनका रात का था, इतना चमत्कार जो बंदर लोग बेहोश हो जाता था उनके चमत्कार देखकर, इतना सूर्य की तरह से। और रावण जो है चार तरफ से रोने लगा, मैं क्या गर्जन करने लगा, इतना पाप उनका रावण ना जो रोते हैं ना, जो परेशान करते हैं संसार के लिए, इतना रो गर्जन करता था, सबके पास कान खराब हो जाता था। बहुत सारे प्रकार के अस्त्र शास्त्र जो भी कुछ है, अंतिम चेरियोंदे तो बोलते हैं ना उसको, अंतिम आक्रमण करना चाहता था उनसे, जो सूर्य देवता लोग डरता था। लेकिन राम बिना जूता क्या उसको क्या खाली पैर जो है निकला, हाँ बिना जूता क्या उसके बेयर फुट क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ नंगे पाँव में जो है जमीन में चलने लगा। विभीषण उनको देखकर बोला राम, और प्रेम के कारण रोने लगा, राम अब क्या करोगे, इतना राक्षस खतरनाक सा, हर प्रकार की अस्त्र उनके पास हैं, आप उनसे उनके साथ कैसे युद्ध करेंगे आप? रावण राम हंसने लगा, देखो विभीषण भाई चिंता मत कीजिए, मेरे पास दूसरा अस्त्र है, मेरे पास दूसरा, हाँ दूसरा मेरे पास राध है। और उन्होंने क्या बोला बहुत सारे बताया, वर्णन दिया जाता है। और वास्तव मेरा तलवार क्या है, वो कहते हैं मेरा तलवार ये संतुष्टि है। जो व्यक्ति संतुष्ट सततम योगी, हाँ संतुष्टि परम सुखी, उसी तलवार से जो आदमी संतुष्टि है कोई कुछ प्रभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा पास उदाहरण है, हमारा जैसे एक क्रिश्चियन लोग आक्रमण किया था इस्कॉन के प्रति, मतलब इस्कॉन के ऊपर आक्रमण किया था मॉस्को में, तो हमारा आप जानते होंगे एक मदन मोहन प्रभु जी हैं, हमारा जानते हैं ना मदन मोहन, बहुत संतुष्टि आदमी है। और ये पूरा टीवी प्रोग्राम था ओपन वोट, क्या चुनाव था हरे कृष्ण और क्रिश्चियन लोग, और सारे देश के लिए पूरा राष्ट्र के लिए कितने कितने 250 मिलियन पीपल जो है देख रहे थे लाइव, ये तर्क था, क्योंकि रूस में तो हरे कृष्ण के बारे में कुछ जानते ही नहीं, ये हरे कृष्ण हरे रामा कहाँ गए, दूसरा दुनिया से आ गया, एक लगा दिया एंटीना, कोई पता नहीं कोई कोई सेट है, पागल लोग हैं ना लोग, सोचते हैं ऐसा, सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और क्रिश्चियन लोग तो अनादिकाल से अपना धर्म है, ये कहाँ से हरे कृष्ण आ गया, तो वो लोग भगवद गीता केस कर दिए ना, हरे कृष्ण को बंद कर घर में डाल देता था, भगाना चाहता था रशिया से, तब इसको चुनौती स्वीकार किया, चलो ठीक है, और प्रतिनिधि रूप में मदन मोहन को रखा। और लोग इतना आरोप लगाता था, ये तुम बेवकूफ, तुम क्रूर आदमी लोग हैं, आप क्या क्या नहीं खाते हैं, लोगों उनका स्वास्थ्य खराब कर देते हैं, मांस नहीं खाते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट दे दिया जो राक्षसी प्रभाव लोगों को बहुत संतुष्टि करते हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घोर आक्रमण किया था रावण की तरह, जैसा आक्रमण किया था। लेकिन मदन मोहन ऐसा, रिकॉर्डिंग है ये प्रोग्राम का, रिकॉर्डिंग में हम दिखाऊंगा आपको। मदन वो तो इतना गाली देते हैं ओपन टीवी में, और बस जांच करने के जो है पूरा सरकार का लोग बैठ रहे हैं और उनको गाली देते हैं, और मदन मोहन हंसते रहते हैं। वो बिल्कुल लाल हो जाता है गुस्से में, और मदन मोहन कुछ नहीं बोलते। और उसमें भी वोट है, वोट ना नंबर टीवी के अंदर, पूरा राशिया पूरा राशिया बटन मरते हैं ना, जितना फोन कॉल आएगा स्टूडियो में इतना तक वोट मिलेगा क्रिश्चियन लोगों के लिए और हरे कृष्ण लोगों के लिए। वो शास्त्र के द्वारा परिचित करना चाहते हैं इस कौन के लिए, अपना राक्षस शास्त्र के लिए। आर्गुमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन मदन मोहन केवल हंसते रहते हैं। और हम लोग टीवी में स्क्रीन में देखते हैं जो मदन मोहन के लिए वोट बढ़ते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनके लिए वोट लोग देते हैं, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि बिना प्रचार कुछ पता चलता है, व्यवहार न जयंती, जो आदमी खुशी हो जाते हैं उनको कोई गाली दिए जाए तुम मूर्ख, हाँ हाँ अमर गुरु अमर मूर्ख हो, देखो खोरिय शासन, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार शिला प्रभुपाद जी बैठ रहे थे, सर्वा तुम लोग सब मूर्ख हैं, सब लोग चुप हो गया, और एक भक्त बोला हाँ प्रभुपाद जी मैं मूर्ख हूँ ना, आपको छोड़ के सब लोग मूर्ख हैं। ये कैसे है, मैं मूर्ख हूँ? ना ना ना, मैं मूर्ख हूँ ये चीज समझने के लिए दिमाग चाहिए, इसलिए तुम बुद्धिमान है। मैं मूर्ख हूँ इस चीज को समझने के लिए बुद्धि चाहिए ना, इसलिए तुम बुद्धिमान है। तो मतलब राम निकला तो संतुष्टि, और हमारा गुण गुण पवित्रता, पवित्रता ये क्या बोलते हैं उसका, जब तीर रख लेते हैं ना तीर, हाँ तर्कस बोलते हैं उसको, पवित्रता बोलते हैं। और मन, मेरा मन शास्त्र के द्वारा जो है एकदम पक्का बना हुआ है मन, ये मेरा गंधीव की तरह जो है धनुष है मेरा। इसी प्रकार जो है वो बोल रहे थे, बहुत सारे उदाहरण दे दिया। और मेरा शक्ति और मेरा क्या बोलते उसको, सहिष्णुता, सहनशील शक्ति, ये मेरा जो घोरों को नियंत्रण करने के लिए सारे सारे गुण बता दिया। ये मेरा घोरा है, ये मेरा अपना राध है, और मेरा तलवार है ये प्रेम, इसी तलवार से मैं मार दूंगा उसको। खुशी से आराम से गया, और विभीषण उनको दिख करके, खाली पांव देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। उसी प्रकार जो है आप लोग देखते हैं हमारे पास आज शक्ति कहाँ से आते हैं, भक्ति समर्पित भाव से। आज का तिरुभाव महोत्सव दे अभिराम ठाकुर का, अभिराम ठाकुर उनके पास जो है विशेष गोपा था, रामदास उनका नाम था। एक बार भगवान श्री कृष्ण लुकी लुकी खेल करता था बच्चों के साथ, अपना गोपाओं के साथ लुकी लुकी बोल देना करता था, और सब लोग जो है गया अपना अपना गुफा में गया था, और भगवान उसको देख रहे थे कहाँ कहाँ कहाँ। लेकिन बाद में उनके मूड चेंज हो गया, चलो ठीक है दूसरा खेल खेलते, और उसको बोला नादिया में, इस बार हम लोग नादिया जाएंगे खेलने के लिए। लेकिन सब लोग चले गए, लेकिन श्रीधाम उनको पता नहीं चला, सब लोग चले गए, वो तो बैठे रहा बैठे रहा बैठे रहा बैठे रहा। लेकिन जब बैठ रहे थे, बाद में जब नादिया पहुंच गया, भगवान पूछा ये श्रीराम कहाँ है, हे बलराम तुम जाओ उसको बुलाओ वापस। और बलराम हो नहीं था आए, तो नित्यानंद जो है गया था, बोला ए श्रीराम श्रीराम निकालो, हम लुकी लुकी हो गया काम, अभी दूसरा काम है, ये क्या संकीर्तन प्रज्ञा जयंती ही सुमेध सा दूसरा लीला है, चलो। और श्रीराम निकालना नहीं चाहता था, मैं बलराम हूँ, मैं आपका जो है सदैव बलराम हूँ, मैं नहीं ना, तुम बलराम नहीं है, बहुत छोटा है। क्योंकि कलयुग में सब लोग 5 फीट और द्वापर युग में सब लोग जो है 9 फीट की तरफ था, तो नहीं नहीं है आप बलराम नहीं है। चलो ठीक है हम लोग दौर करते हैं, अगर मैं दौर में आपको पकड़ नहीं पाऊंगा तो मैं बलराम नहीं हूं। फिर दौर करने लगा दोनों, तुरंत उसको नित्यानंद पकड़ लिया। ठीक है मन्य है तुम बलराम है, तो सीताराम भी जो है अपना अवतार प्रकट कर दिया रामदास रूप में। वो जाएगा, मैं फिर नहीं जाऊंगा, मैं गुस्से में मैं नहीं जाऊंगा। तो रामदास एक नाम अभिराम ठाकुर का नाम था, तो अभिराम ठाकुर चैतन्य महाप्रभु लीला में जो है थे, और अभिराम ठाकुर उनके पास इतना शक्ति था जिसको भी प्रणाम करता था अगर वो असली भक्त नहीं है वो मर जाता था। पंजाबी भाग में तो जरूर बुला दीजिए उसको, आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, सब लोग असली भक्त लोग इधर सबके पास गुण है हनुमान जी के पास जैसे। लेकिन वो जिसको भी प्रणाम करता था अगर वो असली भक्त नहीं था वो मर जाता था, खतरनाक है। तो एक बार भी नित्यानंद प्रभु का पुत्र भी जन्म हुआ, उनको भी प्रणाम किया था, वो भी मर गया। बताइए बहुत खतरनाक है, कैसे आदमी उसको गृहस्थ लोग घर में बुलाया कार्यक्रम के लिए, आइए प्रभु जी घर में, और वो प्रणाम करने लगा सब लोग मरने लगा, तो प्रभु जी जाइए यहाँ से। लेकिन बाद जब नित्यानंद महाप्रभु का जो है नित्यानंद प्रभु का उनका लड़की जन्म हुआ गंगा देवी, उनको प्रणाम किया था उनको कुछ नहीं हुआ, आहा तब अभिराम ठाकुर खुशी हो गया उनको प्रशंसा करने लगा। और बाद में जब वीरभद्र भी जन्म हो गया नित्यानंद प्रभु के घर में, उसको भी प्रणाम किया था, बहुत खतरनाक टेस्टिंग है ना। फिर भी कुछ नहीं हुआ, आहा तब स्तुति करने लगा, बहुत बड़ा प्रशंसा किया था, प्रार्थना बना दिया गंगा और वीरभद्र के लिए। और एक भी मुकुंड भक्त था चैतन्य महाप्रभु का, उनके पास लड़का छोटा बच्चा था रघुनंदन, चलो ठीक है किसी ने बोला बहुत अद्भुत लड़का है, भगवान उनका हाथ से खाते हैं डायरेक्ट, वो अलग अलग कहानी है। मुकुंड ने बोला ये मेरा पिताजी है मेरे को भक्ति सिखा रहे। चैतन्य महाप्रभु पूछा कौन पिता कौन पुत्र, जानते हैं ये कहानी। तो मुकुंड ने बोला ये बच्चा मेरा पुत्र पिताजी वास्तव में है, पिता वो होता है जो हमको धर्म देते हैं, तो चलो मैं उनको भी टेस्ट करता हूँ। और गया था उनका गांव में और सबको पता चला है अभिराम ठाकुर आ रहे, भाई भागो भागो, ये लड़का को छुपा के रखो कहीं, आपका पुत्र को प्रणाम करने के लिए आ रहा है। तो उसके पिताजी भी घबरा गए, भाई महाराज है ही नहीं मेरा पुत्र, उसको छुपा के रखा भाई है ही नहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन। तो अभिराम ठाकुर व्याकुल हो गया, वो पेड़ के नीचे बैठ गया, चले गया गांव से। लेकिन रघुनंदन को पता चला अरे मेरे से मिलने के लिए आया पिताजी क्यों ऐसे किया, वो चुपके भाग गया घर से, दौड़ने लगा उनको पकड़ने के लिए, अभिराम ठाकुर रुको रुको मैं हूं। तब अभिराम ठाकुर खुश हो गए, तुरंत प्रणाम किया था और फिर कुछ नहीं हुआ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का गोद में बैठ गया है, वो दूसरा कहानी है। रघुनंदन जो है उनको कुछ नहीं हुआ, और इतना पागल जैसे दोनों नचने लगा, दोनों पागल नचने। तो रघुनंदन ऐसा पीर मार दिया, तो उनके पास क्या नुपुर था, नुपुर पीर में था, वो नुपुर उड़ने लगा कहीं गांव में गिर गया। अभी तक उसी गांव में पूजा किया जाता है उसी नुपुर को बंगाल में। तो मतलब कहाँ कहाँ कहने का मतलब, और अभिराम ठाकुर जो है उनके पास एक क्या उसको वीप क्या बोलते उसको फिर हाँ क्या वो था ना जय मंगल उसको बोलता था, किसको भी मारता था वो सब पागल भक्ति में जो है पागल हो जाता था, प्रचार से नहीं मारता था उसको तुरंत पागल, हरे कृष्णा। एक बार श्रीनिवास आचार्य उनके घर में आ गया, श्रीनिवास आचार्य आ गया वो युवा लड़का था, तो अभिराम ठाकुर उसको टेस्ट करने लगा, एक बार ये क्या चावा चाबुक, और चाबुक से उनको एक बार मारा दो बार मारा तीन बार मारा, उनका श्रीमती बोला रुको रुको प्रभु ठाकुर रुक जाइए मत मरी पागल हो जाएगा लड़का। जब तक उसको तीन बार मारा तो श्रीनिवास ठाकुर पागल हो गया, जब नचने लगा। ठीक है तीन दोष पर्याप्त, एक दोष से भक्ति मिल जाता था, वो तीन बार मारा उसको। तो इसी प्रकार भक्तों का जो है, उसी प्रकार जैसे वो चैतन्य महाप्रभु से आदेश मिल गया उनको प्रचार करने के लिए, उसी प्रकार हम लोग शिल प्रभुपाद जी से आदेश मिल गया। अभिराम ठाकुर उनको चाबक से मारता था और हम लोग लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन किताब से मारते हैं, सबको भक्ति आ जाते हैं क्योंकि बेहतरीन चार्ज है इसमें। प्रभुपाद जी ने बोला मैं जितने मेरे पास भक्ति था सर्वश्रेष्ठ गुण मैं किताब में डाल दिया,
जो मेरे पास सर्वश्रेष्ठ था मैं किताब में डाल दिया। तो जब हम लोग किताब देते हैं, हम लोग वास्तव में जो है आचार्य के साथ संबंधित बनाते हैं लोगों के पास किताब द्वारा, और लोग जो पढ़ते हैं तुरंत परिवर्तन हो जाता है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं परिवर्तन। और हमारे पास बहुत सारा अनुभव ऐसा है, जो लोग किताब, और आपको तो संकीर्तन फेस्टिवल बनाना पड़ेगा, आपको बहुत बहुत कहानी बता सकूँ अपने अनुभव से, और आपके पास अनुभव होता है। जो भक्त लोग प्रचार करते हैं आपके सामने, लोग परिवर्तन हो जाता है कुछ समय के बाद। ये हमारा महात्म्य है, श्रीमद् भागवतम महापुराण अमलम पुराणम निगामा कल्पत्रो गलितम फलम, यह असली रास फल है। उसको हमारा उद्देश्य, प्रभुपाद जी ने बोला हमारा उद्देश्य इसी फल को वितरण करना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं ये आम ऐसा आम का पेड़ बना दिया, वो लोग कीर्तन करता था सब लोग पंचतत्व, इतना थक गया पीने के लिए कुछ रस नहीं था, चैतन्य महाप्रभु एक तुरंत पेड़ बना दिया, आम का पेड़ बना दिया, और इतना बड़ा बड़ा आम उसमें था, और उसमें ना तो कोई चमड़ा था ना तो कोई बीजा था, केवल केवल जूस का जो है वो ये टुकड़ा। सब लोग जा खाने लगा ऐसा खा, विश्वास कीजिए कितना बढ़िया आम है, अगर इधर भी प्रकाश हो जाए। और जितना लोग आइए फ्री में फूल खाइए, ऐसा स्नान करिए करिए, जो भी कुछ करना है करिए, इतना फल है उसमें, कोई चमड़ा भी नहीं है, कोई बीजे भी नहीं है, ऐसा खा जा। तो चैतन्य महाप्रभु बोला तुम पहले खाओ, राम जी के चीरे, राम जी के खेत खूब खाओ, चीरे बरबर के पेट पूरा खाया, और प्रचार भोजन का धक्कार, जब पूरा खाया धक्कार आ जाता है, ये प्रचार है। जब आपको सेटिस्फेक्शन हो गया, संतुष्टि परम सुखी, आप खुशी है कृष्ण भावना अमृत में, आप बाहर निकले लोग अपने आप परिवर्तन हो जाएगा आपको देखकर, मदन मोहन जैसा आपको देखकर ही लोग देगा हाँ जरूर उनके पास कुछ है। इस संसार में कौन खुशी है, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन बिना उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुख की श्याम का दास, राधारमान का दास। इसलिए आप कृपया सुखी रहिए, और जैसे हम लोग प्रभुपाद जी का परिवार है, परिवार में चार प्रकार की पुत्र होता है ना, एक पुत्र होता है शत्रु पुत्र, मालूम है आपको शत्रु पुत्र होता है, वो शत्रु पिछले जन्म से जो है हमारा शत्रु दुख देने के लिए आते हैं, शत्रु पुत्र होता है। दूसरा प्रकार के पुत्र होता है ऋण पुत्र, जो व्यक्ति हम पिछले जन्म में हमको उसको पैसा नहीं दिया 1 करोड़ रुपया और भग गया मर गया, वो गुस्से में जो है अगले जन्म में आपका पुत्र रूप में जन्म लेगा, और हमको उनको प्रेम से खिलाना पड़ेगा, स्कूल एजुकेशन गाड़ी लैपटॉप कंप्यूटर आईफोन आईपॉड आईटच, आपको वो पैसा इनडायरेक्ट आपको देना पड़ेगा। तीसरा प्रकार के पुत्र होते हैं उदासीन पुत्र, परिवार से कोई मतलब नहीं है, परिवार में कोई जन्मदिन, कोई मर गया, कोई बेटा आइए, कोई मतलब नहीं, मतलब कोई भाग नहीं लेते हैं, परिवार का जो जीवन होता है कोई मतलब नहीं है, और अंत में जो है विदेश चले जाते हैं, वापस कभी आते नहीं, पिता माता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, कथम उदासीन पुत्र। लेकिन चार नंबर पुत्र होता है सेवक पुत्र होता है, सेवक पुत्र सेवा करने के लिए तत्पर है, पिता माता के लिए सेवा करते हैं, विशेष करके पिता माता उसको मतलब तीर्थ यात्रा कराते हैं, सेवा करते हैं, और विशेष करके पिता माता अगर भक्त होता है तो विशेष सेवा करना चाहिए। तो हमारा पिता तुमेव, माता च पिता तुमेव, तुमेव विद्या द्रविडम तुमेव, तुमेव बंधुर ससका तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। इसलिए अगर हम लोग पिता राधिका रामन, राधा कृष्ण, कृष्ण राम, राधा बेनी माधव, राधा गोविंद हरि, कोई भी भगवान है हमारा मंदिर में, प्रभुपाद जी बोला ये सर्वश्रेष्ठ दी थी इसको उनका, प्रभुपाद जी जब जाता था हर मंदिर में बोलता था आहा हा 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 रुक्मिणी द्वारा कदीश सबसे श्रेष्ठ ठाकुर जी इसकोन में, और सब भक्त लोग लॉस एंजलिस का वेरी नाइस, और जब जाता था न्यूयॉर्क में राधा गोविंद सर्वश्रेष्ठ ठाकुर जी है, सब वेरी नाइस। और प्रभुपाद जी का लेटर पढ़िए, संकीर्तन डिपार्टमेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन सर्वश्रेष्ठ सेवा इसकोन का, सब संकीर्तन भक्त लोग, और पुजारी डिपार्टमेंट के लिए बोलता था डीटी वर्शिप मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस इन इस्कॉन सर्वश्रेष्ठ सेवा, और गुरुकुल दालस में लिखता था गुरुकुल चिल्ड्रन एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस। जो भी आप लोग सेवा करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ सेवा, उसमें संतुष्टि रहिए, और ये आपका प्रचार है और ये आपका बाल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। ग्रंथरत श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय गौर प्रेमानंद।